मेरे युवा साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में तो हम सब वीआईएस 2022 की तैयारी के विषय को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार के बारे में बात करना चाहूंगा। और ये जो समाचार है तो कल का, लेकिन मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर्स में बहुत लंबे समय तक काम में आने वाली न्यूज है। आप सब जानते हैं कि ग्लासगो में बकायदे COP26 की शुरुआत हो चुकी है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां भारत क्या कर रहा है और भारत का क्या विजन है उसे तो विस्तार के साथ रखा ही है, अखबारों में बहुत डिटेल में आप पढ़ लेंगे। लेकिन उसमें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मुझे लगी वह है पंचामृत, यानी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस कार्बन उत्सर्जन के लिए क्या किया जाना चाहिए और भारत क्या क्या कर रहा है। तो उन्होंने पंचामृत की बात कही है, आप इसे कह लीजिए कि दुनिया के सामने एक सौगात है भारत की ओर से पंचामृत। अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पंचामृत है ये क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आप सब बता देंगे, क्योंकि जब भी आप हिंदू मंदिरों में जाएंगे या कोई सत्यनारायण की कथा इस तरह के अवसरों में शामिल हुए होंगे तो आपको प्रसाद के साथ पंचामृत दिया जाता है ना, जिसे आप बकायदे दोनों हाथों से श्रद्धा के साथ लेते हैं और फिर आप उसे पी जाते हैं पंचामृत। और पीने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो इसका बड़ा फैन हूं, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि ये पंचामृत इसे कहा क्यों जाता है और इसका क्या मतलब हुआ? आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही दिमाग को एक्टिवेट करने का एक तरीका होता है, यह भी एक तरीका होता है, यही तो नहीं कहना चाहिए, यह भी एक तरीका होता है। पंच अमृत यानी कि ये पांच अमृतों से बना हुआ है, पांच अमृतों से बना हुआ, या यूं कह लीजिए कि पांच तत्वों को मिलाने से एक अमृत बन गया है। अमृत नेक्टर आप जानते हैं कि जिसे पीने के बाद आप अमर हो सकते हैं, मृत्यु आपके आसपास तक नहीं फटक सकती, अमृत। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पांच कंटेंट कौन कौन से हैं जिन्हें मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है, तो पता नहीं आप में से कितने लोग बता पाएंगे, खैर ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा जान लेते हैं, हो सकता है कि आप कभी कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच जाएं और ये सवाल पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, ये जो पांच तत्व हैं, देखिएगा कि कौन कौन से हैं। शहद, जिसे आप हनी कहते हैं, शहद। इसके बाद है गुड़, चीनी नहीं, याद रखिए, गुड़। इसके बाद है दूध, लेकिन ये गौ का दूध है, भैंस का दूध नहीं, गौ दूध। इसके बाद है दही और फिर है घी। तो इसमें देखिए कि तीन चीजें सीधे सीधे गाय से जुड़ी हुई हैं, गौ दूध, दही और घी। फिर उसमें आप गुड़ मिला देते हैं, शहद मिला देते हैं, और वास्तव में अमृत के जैसे स्वाद का एक तत्व बन जाता है, जिसे अक्सर प्रसाद के रूप में ही उपयोग में लाया जाता है। तो भारत ने जो पंचामृत की सौगात दी है वो क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण आपके सिलेबस में है, और अब तो सीधे सीधे जो आपदा प्रबंधन है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही जुड़ गया है। तो मैं अब आपके सामने वो डेफिनेटली, हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये पांचों तथ्य रखना चाहूंगा, या कह लीजिए कि पंचामृत के ये पांचों तत्व बताना चाहूंगा। इसमें से देखिए जो पहला तत्व है उसके तहत भारत ने वहां कहा है कि हम 2030 तक अपनी जो नॉन फॉसिल एनर्जी क्षमता है, नॉन फॉसिल एनर्जी क्षमता का मतलब है जैसे अभी हम ज्यादातर एनर्जी किससे बना रहे हैं, कोयले से बना रहे हैं, तो फॉसिल्स एनर्जी है। तो हम 2023 तक जो हमारी नॉन फॉसिल एनर्जी क्षमता है, यानी कि कोयले से हट करके दूसरे माध्यमों से एनर्जी प्राप्त करने की क्षमता को हम 500 गीगावाट तक पहुंचा देंगे 2030 तक, ज्यादा वक्त नहीं है, 9 साल में 500 गीगावाट। अभी हम लगभग इस तरीके से 150 गीगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो यूं कह लीजिए कि इसे मोटे तौर पर 3 गुना करना है रिमेनिंग 9 ईयर्स में, तो हो सकता है कि हम इसे पा लें। दूसरी बात भारत ने कही कि हम 2030 तक हमारी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट का 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे, जिसे आप ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पन बिजली रिन्यूएबल एनर्जी है, वायु से उत्पन्न एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, हवा लगातार चल रही है, सूरज लगातार चमक रहा है, ये रिन्यू किए जा सकते हैं। तो दोस्तों 2030 तक ये आंकड़े आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होने चाहिए। ज्यादातर हमने जो वायदे किए हैं वहां चार जो पंचामृत हैं 2030 से ही संबंधित हैं। एक आपने देख लिया, दूसरा है 50% ऊर्जा जरूरतें हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे। अभी जो हम पूरा कर रहे हैं वो लगभग 25% है। रिन्यूएबल एनर्जी धीरे धीरे काफी भारत उत्पादित करने लगा है, तो 25% है। तो आप कह सकते हैं, होता है ना कि मूल्यांकन कीजिए और इस तरह से अब आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इस तरह के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम अभी 25% तक पूरा कर रहे हैं तो 9 साल में हम 50% तक कर लेंगे। तीसरी जो बात कही गई है कि 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो है 1 बिलियन टन की उसमें कमी करेंगे। देखिए इसमें शब्द प्रयोग किया गया है कार्बन एमिशन, यानी कि जो हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं। 2030 तक हम 1 बिलियन टन की कमी कर देंगे। इसे भी उम्मीद की जा रही है कि हम शायद पा लेंगे। इसके बाद है दोस्तों कि 2030 तक, देखिए यहां भी 2030 तक की बात है, इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी हम कम कर देंगे। जो कार्बन इंटेंसिटी है, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी, इसको आप थोड़ा सा अलग से देख लीजिएगा। आप कुल मिलाकर के यूं कह लीजिए कि ये घनत्व की बात है और इससे हम पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि कहाँ कितना पोल्यूशन है या कौन सी चीज के जलने से कितना पोल्यूशन बनता है, कितना होता है। तो ये इंटेंसिटी है, ऐसा लग रहा है कि हम इसे भी पा लेंगे। इसके बाद पांचवा 2070 की बात करता है और 2070 में भारत बकायदे जो कार्बन एमिशन है उसमें नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अभी आप ग्लासगो में नेट जीरो शब्द सुन रहे होंगे। नेट जीरो कहने का मतलब है कि हम जितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं या जितना हम प्रदूषण फैला रहे हैं, बकायदे उसी के बराबर हम पर्यावरण को लौटाएंगे। यानी कि हम उससे कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम उसे अवशोषित भी कर लें, मतलब बराबर हो जाए। हम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही हम कार्बन अवशोषित भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कोई भी प्रदूषण फैला नहीं रहे हैं, बिल्कुल हम जीरो की स्थिति तक आ जाएंगे। तो मित्रों ये है 5 अमृत पंचामृत और इसके बारे में आपको बकायदे नोट कर लेना चाहिए, अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वायदा है जो ग्लासगो में भारत ने किया है, तो लंबे समय तक यह आपके काम आने वाला है। निबंध में भी, पर्यावरण से संबंधित डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर में भी, और प्री एग्जामिनेशन में भी अगर पूछ लिया जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अभी तक जो मैं इसका शीर्षक लेकर के चल रहा था मुख्य विषय का, उससे आप लोग परिचित हैं कि प्री 2022 की तैयारी। कल मैंने जब इस पर सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, प्री शब्द को निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं केवल प्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, प्री मेंस और इंटरव्यू। क्योंकि मैं प्री अलग से तैयारी के सिद्धांत का व्यक्ति नहीं हूं कि उसकी अलग से तैयारी की जाएगी, नहीं, हम मेंस की तैयारी करते हैं तो प्री की तैयारी अपने आप हो जाती है। तो दोस्तों मैंने बिना आप सबसे पूछे ही अब इसके शीर्षक को बदलने का फैसला किया है और इसका शीर्षक अब मैंने रखा है IAS 2022 की तैयारी। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, IAS शब्द से आप में से कुछ लोगों को इतराज हो सकता है, क्योंकि IAS की परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसका नाम है। लेकिन अगर मैं यहां सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगूं तो बहुत से लोगों को भ्रम हो जाएगा। देखिए स्टेट सिविल सर्विस भी होती है, तो लोगों को लगेगा कि ये क्या कहा जा रहा है। तो यहां मैंने जानबूझकर आईएएस शब्द का इस्तेमाल किया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप इसे इस रूप में ले लें कि आईएएस बनाने वाली परीक्षा की तैयारी, आप ये कह लें। और जो टारगेट ईयर है 2022, तो अब जो शीर्षक आपको पढ़ने को और सुनने को मिलेगा वह होगा आईएएस 2022 की तैयारी, यानी कि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, 2022 में बनना चाह रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप कैसे करें। और देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो भी बैठते हैं बनना तो आईएएस ही चाहते हैं, फिर भले वो आईएएस न बन पाए, कोई दूसरी सर्विस उनको मिल जाए, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो आईएएस का ही होता है, आईएएस आईएफएस इस तरह से आप कह लीजिए, तो ठीक है, ये बात कही जा सकती है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे दो बातें स्पेशली शेयर करने जा रहा हूं। पहली बात, आईएएस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, जब मैं आईएएस कह रहा हूं तो एग्जामिनेशन ही लेकर के चलिएगा, आईएएस एग्जामिनेशन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 2-2 साल तक पढ़ना चाहिए, फलाना फलाना, इतनी सारी किताबें, वो ये खूब सारा आपने सुना होगा। और सच पूछिए तो जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम आतंकित हो उठते हैं, आतंकित, अरे बाप रे, इतनी मेहनत, नो डाउट मेहनत है, इतनी मेहनत, इतना सारा पढ़ना, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, कुछ भी ये होगा। और याद रखिए कि यदि आप किसी भी चीज से आतंकित हो जाएंगे तो आपकी ऊर्जा डाउन हो जाएगी, तो आतंकित न हो। नो डाउट ये कठिन परीक्षा है और आप इतने अनजान नहीं है कि कठिन परीक्षा को बिल्कुल बाएं हाथ का खेल समझ करके और आपने आईएएस बनने का निर्णय ले लिया हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, आप बहुत गलत रास्ते पर चल गए हैं, कठिन तो है। तो जब कठिनता आती है तो हमें आतंकित होने की जरूरत नहीं है, तो क्या होने की जरूरत है, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने की जरूरत होती है, याद रखिए। लेकिन चुनौती शब्द आपके दिमाग से गायब नहीं होना चाहिए, यह चैलेंज है आपके लिए और बहुत बड़ा चैलेंज है, पहली बात। दूसरी बात, हालांकि उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, कल मैं उस पर बात करूंगा कि आप कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस पर हम लोग कल बातें करेंगे। आज मैंने आपके दिमाग में डाल दिया कि अगर मैं चुनौती के रूप में ले रहा हूं तो फिर मैं इस चुनौती का सामना कैसे करूंगा, यह है सेकेंड पॉइंट। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेस हमारी 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली हैं, तो इसके लिए हमारे एक नौजवान साथी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनका नाम है अब्दुल्ला अनवर, जो मधुबनी बिहार से हैं। तो अब्दुल्ला अनवर जी, आपका एकेडमी में स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, कृतिका मिश्रा, सैकत बैनर्जी आसनसोल वेस्ट बंगाल से, आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, और रवीना राय खपुरा बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।